ओम ब्रह्म सत्यम। सब मिलकर वाणी का उच्चारण करेंगे, साथ ही ये वाणी जो संदेश दे रही है उस पर भी ध्यान देते चले।
सत्पुरुषों की सीख विचारी, सत्पुरुषों की सीख विचारी, पूरन भाग तिस जन ने पाई, पूरन भाग तिस जन ने पाई,
पूरन भाग तिस जन ने पाई, पूरन भाग तिस जन ने पाई।
सत्पुरुषों की जो शरण लखाई, सत्पुरुषों की जो शरण लखाई,
सत्पुरुषों की जो शरण लखाई, सत्पुरुषों की जो शरण लखाई।
मूढ़मति सब मन की जाए, मूढ़मति सब मन की जाए,
मूढ़मति सब मन की जाए, मूढ़मति सब मन की जाए।
सत सिखिया जो गुनी कमाए, सत सिखिया जो गुनी कमाए,
सत सिखिया जो गुनी कमाए, सत सिखिया जो गुनी कमाए।
मिथ्या भर मन सकल विनाशे, मिथ्या भर मन सकल विनाशे,
मिथ्या भर मन सकल विनाशे, मिथ्या भर मन सकल विनाशे।
सत साधु का जो वचन उपासे, सत साधु का जो वचन उपासे,
सत साधु का जो वचन उपासे, सत साधु का जो वचन उपासे।
अत अंधकार जाए अभिमान, अत अंधकार जाए अभिमान,
अत अंधकार जाए अभिमान, अत अंधकार जाए अभिमान।
साध की सेव करे कल्याण, साध की सेव करे कल्याण,
साध की सेव करे कल्याण, साध की सेव करे कल्याण।
सत विश्वास जिस गुरुमुख पाया, सत विश्वास जिस गुरुमुख पाया, साध की सीख प्रभु मेल मिलाया, साध की सीख प्रभु मेल मिलाया,
साध की सीख प्रभु मेल मिलाया, साध की सीख प्रभु मेल मिलाया।
पूरन भाग तिस जन ने पाई, सत पुरुषों की जो सरल लखाई है। जिस मनुष्य ने संसार में आकर किसी भी सतपुरुष की शरणागति धारण की, उसका वास्तव में पूर्ण भाग्य है, अर्थात सर्वोच्च भाग्य। आम लोग मनुष्यों के शरणागत होते हैं, माया के शरणागत होते हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यशाली पुरुष किसी गुरु को अपने जीवन में धारण करता है। और शरणागति का मतलब है कि उसने जो जीने का मार्ग बताया है, उसने जो संसार का विज्ञान हमको समझाया है, ईश्वर का विज्ञान हमको समझाया है, तो उसको जीवन में अपनाने के लिए वो गुरु की शरणागत होता है। शरणागति का मतलब ये है कि उसकी बुद्धि में ये पक्का निश्चय हो गया है कि मेरे जीवन की सफलता गुरु के अनुसार संसार में चलने से होगी, अन्यथा मेरा जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये पूर्ण भाग्य है, सर्वोच्च भाग्य है मनुष्य। लेकिन यदि हम अपने बुद्धि के निश्चय पर विचार करें या जीवन जीने का तरीका हमारा है उस पर विचार करें, तो एक चीज बिना पढ़े लिखे सिद्ध होती है कि मेरा जीवन सांसारिक जीवन है और सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मैं अपने जीवन को संसार में व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन अध्यात्म विद्या यदि मैंने ना सुनी, ना पढ़ी, ना समझी, तो फिर मुझको ये एहसास ही नहीं होता कि मेरा जो सांसारिक जीवन है, चाहे कैसा भी क्यों ना व्यतीत कर लूं, वो पांच विकार के अंतर्गत ही है। इसको बार बार हम सुनते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसीलिए सांसारिक जीवन को अध्यात्म में विकारी जीवन कहा जाता है, या वासना युक्त जीवन कहा जाता है, वासना से प्रेरित जीवन कहा जाता है। जो वासना मनुष्य को परेशान करती है, हम सब जानते हैं कि एक घर का बालक यदि भोगी विलासी बन जाए तो पूरे घर को चौपट कर देता है। उसके मन की हालत भी जानते हैं, उसकी बुद्धि की हालत भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो जीवन को खत्म करता है और अन्य लोगों को परेशान करता है। तो संसार प्राण जो जीवन है, वो वास्तव में यदि देखा जाए तो नरकी जीवन है। क्योंकि पांच विकार से ऊपर नरक क्या होगा, क्योंकि बुद्धि है नहीं, सतबुद्धि है नहीं, गुरु कोई बनाया नहीं, शास्त्र सत्संग पढ़ने की सुनने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो सतबुद्धि कहां से आएगी। बुद्धि तो है लेकिन सतबुद्धि नहीं। तो जो सतबुद्धि नहीं है, सांसारिक बुद्धि है, उसकी सीधी सीधी सी पहचान है कि वो पांच विकार के अंतर्गत ही निर्णय कर रही है और पांच विकार के अंतर्गत ही उसके सारे प्रयास हो रहे हैं, सारे कर्म हो रहे हैं, और उसी के लिए वो जीवन जी रही। तो इसीलिए पूर्ण भाग तिस जन ने पाई, सतपुरुषों की जो शरण लखाई। जो किसी सतपुरुष की शरणागत हो गया, जिसने अपने जीवन में वास्तव में गुरु धारण किया, इस वास्ते कि मैं इस विकारी जीवन से मुक्त हो सकूं, और जैसा कि गुरु को हम देखते हैं कि उसने अपने देह के अंदर ही उस ईश्वर का अनुभव किया और उस परम शांत अवस्था को प्राप्त किया, धारण किया, जिसको देखकर लोग उसके नजदीक जाते हैं। कोई भी आप व्यक्ति यदि पूर्ण गुरु के पास पहुंच जाए तो उसको ऐसी ठंडक, ऐसा चैन मिलता है कि जैसे ये तपिश हो, बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, कोई व्यक्ति नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंच जाए तो ठंडी हवा उसकी सारी गर्मी जो है सारी तपिश को शांत कर देती है। उसी प्रकार जो पूर्ण गुरु के पास पहुंचता है या उसका विश्वास लेकर उसके अपने जीवन को रहता है, तो उसके मन के अंदर भी जो वासना की बेचैनी थी, वासना की आग जल रही थी, उससे उस जीव को ठंडक प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो आगे कह रहे हैं कि मूढ़ मति सब मन की जाए, सत सिखिया जो गुनी कमाए। अब ये मूढ़ मति मन की क्या है? हम जानते हैं कि मन के अंदर जो भी संकल्प उठता है, जिसको हम इच्छा करके कह देते हैं, आप देखिए वो सांसारिक संकल्प होता है। बच्चे कैसे पालने हैं, शादी किसकी करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा सामान बाजार से लाना है, क्या खाना है, सारा कुछ जो है चिंतन मन के अंदर जो संकल्प उठते हैं, आप देखिए केवल संसार के उठते हैं, उसके ऊपर मन की कोई पहुंच नहीं। तो दूसरी बात क्या कह रहे हैं, वो सत सिखिया जो गुनी कमाए। अब ये कौन सी कमाई है? जो सत शिक्षा है, गुरु की शिक्षा है, वो कौन सी कमाई करने की कह रही है? जो मन की मूढ़मति खत्म कर दे, वो एक ही कमाई है कि मन के अंदर ईश्वर का संकल्प उठे, ईश्वर की याद आए मन को, कि सिमरन करूंगा तो शांति मिलेगी, सिमरन करूंगा तो जीवन सफल होगा, मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होगी। तो अब बताइए, जिसने गुरु की शरणागति ली, उसका पहला जो पाठ शुरू होता है अध्यात्म का, वो सिमरन से ही शुरू होता है। नहीं तो महाराज जी समता विलास में क्यों लिखते हैं, प्रेमी कम से कम 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है, कंपल्सरी है, नो चॉइस। जीवन बिगाड़ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने जीवन संभालना है ये उसके लिए लिखा गया। जिसने मानव जन्म लेकर सही जीवन व्यतीत करना है ये उसकी आवश्यकता है, ये उसका वे ऑफ लाइफ है। तो अब बताइए कि गुरु की पहली शिक्षा ही ये है, वो मिनिमम स्टार्ट कर रहे हैं कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक, ये वो समय होता है जब हमारे संसारिक विकास का होता है, संसारी एजुकेशन का होता है, संसार को फैलाने का वो होता है, क्योंकि ये 30 तक जाके जो जिसको भरी जवानी कहते हैं वो वक्त 30 तक खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका ढलान शुरू होता है। तो उमंग की जो हमारी आयु है, होश की जो आयु है, वो तो 15 से 30 वर्ष की है, और वहां तो मुझे होश ही नहीं आता, गुरु की तो कोई आवश्यकता समझता ही नहीं मैं, संसार की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है, बड़े बड़े लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। तो इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं कि बाकी जन्म हमारा उसके पुरुषार्थ में ही खत्म हो जाता है, होश ही नहीं आता। तो अब बताइए, यदि किसी को होश नहीं भी आया 30 साल तक, उसके बाद में होश आया तो क्या करेगा वो? क्या वो नाम मात्र के लिए 5 मिनट 10 मिनट ईश्वर का नाम ले लेगा? उसको सोचना है, इतनी लंबी जो मेरी मुख्य आयु थी वो मैंने ऐसे ही बिता दी संसार में, अपने साथ में धोखा ही करता रहा, लेकिन अब यदि होश आया भी तो मिनिमम प्रोग्राम तो शुरू करूं मैं। यदि मिनिमम प्रोग्राम भी शुरू नहीं करता, इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि मैंने गुरु की शरणागति धारण नहीं की। मैं महात्मा मंगतराम जी का शिष्य हूं, वो मेरे गुरु हैं, ये सब बातें ही तो हैं। फिर गुरु की यदि मिनिमम बात भी आप मानने को तैयार नहीं हो, उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो, तो फिर आप विचार करो कि आपके मन का शोधन होगा, आपके मन का प्योरिफिकेशन होगा, या फिर मन के अंदर विकार बढ़ेंगे। आपने 10-15 मिनट सिमरन कर भी दिया, उससे क्या हो जाए? उससे ज्यादा तो आप मन के अंदर संकल्प बढ़ा लोगे, विकार बढ़ा लोगे। तो इसीलिए ये अपने को सांत्वना दे देना कि महाराज जी को मैं मानता हूं, मैं उनके महामंत्र का जाप भी करता हूं, ये धोखा अपने साथ करना। आपको जब लिखित में गुरु ने दे दिया
कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम एक घंटा सुबह एक घंटा सायकाल स्मरण करना लाजमी है। लाजमी का मतलब होता है कंपल्सरी। और फिर महत्व लिख दिया उसका, खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। अब बताइए, खाने से तो शरीर की जीवन की रक्षा होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। ये उन्होंने एम्फेसिस, ये उन्होंने जोर क्यों दिया, क्योंकि बड़ी साधारण सी भाषा है कि मनुष्य कहता है रोटी के बिना तो मेरा जीवन ही नहीं चले। तो मनुष्य जन्म मिला तो उसको कौन सा जीवन चलाना चाह रहा है? खाने पीने घूमने का जीवन चलाना चाह रहा है? ये तो पशु जीवन है। तो इसीलिए कहते मूल मति सब मन की जाए, सत्स किया जो गुनी कमाए। गुरु की जो सत शिक्षा है उसकी कमाई करनी है, तो कमाई उसकी कौन सी है? सिमरन ही तो कमाई है उसकी। सारी गुरु की शिक्षा एक पॉइंट पर खड़ी हुई है कि नाम सिमरन, ये कमाई है। गुरु की शिक्षा जीवन में अपनाना ये कमाई, तो उसका आधार सिमरन है। तो इसीलिए यदि मैं अपने ऊपर अपने लिए एडजेक्टिव लगा दूं, मैं महाराज जी को मानने वाला हूं और मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, पुरुषार्थी व्यक्ति हूं, तो ये देखो कि गुरु की जो मिनिमम आज्ञा है उस पर भी तुम आया नहीं आए, नहीं तो हमारा ये मार्ग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। संसार के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस करता रहा हूं, 30 वर्ष की आयु मेरी ऐसे ही निकल गई, ईश्वर की मुझे ईश्वर का तो ध्यान ही नहीं आया मुझे, तो अब इतना बड़ा घाटा हो चुका, अभी भी मैं सीधा नहीं होने को तैयार नहीं हूं, तो क्या लेके जाऊंगा संसार से? इसीलिए मन के संकल्प जो तेरे अंदर उठते हैं उसको देख तू जरा बैठ, क्या संकल्प उठ रहे हैं? तो मन के अंदर संकल्प प्रभु की याद के उठने चाहिए। संसार के काम कर रहा है तो मन में संकल्प उठ रहा है कि जल्दी से काम फिनिश करूं तो प्रभु की याद करूं, संकल्प तो ये उठना चाहिए मन के अंदर। ये क्यों नहीं उठते? क्योंकि दूसरी बात है कि मिथ्या भरमन सकल विनाशे, सत साधु काजो वचन उपासे। सत साधु का मतलब सतगुरु, जिसने उस ईश्वर को प्राप्त किया है, अंदर ईश्वर में जो लीन हुआ है, जो खुद ब्रह्म रूप है, वो देह नहीं है। दिखाई पड़ने में वो देह है, लेकिन वास्तव में वो शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक। इसलिए महाजी कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उठा। वो घट है तेरे अंदर, वो मेन गेट है तेरे देह के अंदर, जिसको तुम्हें खोलना है। वो कैसे खोलेगा? जो साधना गुरु बता रहा है, जो परहेज गुरु बता रहा है, उसको यदि करता है वो खुल जाएगा। तो जैसे कोई राज दरबार में जाए राजा के पास, तो एक रास्ता अपनाता है ना, कि भाई इस रास्ते से जाओ राजा के पास पहुंच जाओ। तो वो ब्रह्म, वो परमेश्वर मेरी देह के अंदर खुद मौजूद है, उसका एक रास्ता है जो गुरु बतला रहा है, आपको मेथड बता रहा है उसका। तो यदि संसार की तरफ जाता हूं तो 5 विकार के अंदर रहता है, पापी जीवन है, बेचैनी का जीवन है। यदि कर्तार्य की तरफ जाता हूं तो चैन का जीवन है, शांति का जीवन है, जिस पर चलकर मनुष्य को अफसोस नहीं होता मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। ये उसके अंदर सांत्वना होती है, शांति होती है कि मैंने अपने जीवन को का सही टाइम जो था मेरा, वो मैंने पूरे पैसे उसके वसूल कर लिए, जीवन मैंने पूरा उपयोगी बना लिया। ये शांति उसके अंदर आती है, ये बुद्धि में स्थिरता उसके अंदर आती है, ये समझ उसके अंदर आती है। तो रास्ता तो फिर सिमरन का ही है, सारा ज्ञान सारा परहेज एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है कि प्रभु सिमरन, प्रभु की। वो जिसके लिए मैंने सारा ये उपाय किए, सत्संग सुना, दान किया, पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, सत्य बोला, सब कुछ किया मैंने, तो फायदा क्या हुआ? सारी किताबें पढ़ी मैंने, सब कुछ तैयारी करी, एग्जाम नहीं दिया, कौन सी क्लास पास करोगे? इसीलिए वो कह रहे हैं कि सत साधु का जो वचन उपासे, उपासन इसका मतलब टू सिट नियर, तो प्रभु का वचन का मतलब है कि प्रभु के पास मैंने बैठना है, प्रभु की मैंने नजदीकी हासिल करनी है। तो इसीलिए प्रभु का जो वचन है वो एक आधार पर खड़ा हुआ है कि सुबह शाम मिनिमम एक घंटा प्रभु की उपासना, प्रभु का भजन, प्रभु का ध्यान जरूर करना, इसको सेवन कहते हैं। तो उसके लिए ये सारी एजुकेशन है, सारी डायरेक्शन है शास्त्रों की। यदि वो ही मैंने नहीं किया तो बताइए आपकी सारी एक्सरसाइज तो निरर्थक है। तो मैं कहता हूं मैं तो प्रेमी हूं महाराज जी का। किस बात के प्रेमी? जो प्रेम का सागर ईश्वर है, जिसका रास्ता देह के अंदर से होकर जाता है, उस रास्ते पर तो चला ही नहीं। इसीलिए हम होशियार ना बने, ये पूरी तरह से 100% विफल जीवन है यदि तू सिमरन के प्रति लापरवाह रहा तो। क्योंकि ईश्वर याद रखिए निर्गुण है, तीन गुणों से ऊपर है, और तीन गुण हम जानते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन तीनों गुणों में प्रभु की प्रकृति जो है उसने बनाई ही ऐसी है, इन तीन गुणों में निरंतर आपस में परिवर्तन होता रहता है, ये संसार का स्वरूप है। तो मैंने जाना था निर्गुण की तरफ, इसीलिए तीन गुणों में से मैं क्या कमाई करता हूं, ऐसा वे ऑफ लाइफ मैं धारण करता हूं कि मेरा जीवन के अंदर सतोगुण प्रबल हो जाए और रजोगुण तमोगुण ये कमजोर पड़ जाए। तो उसके लिए सारा विज्ञान समझाया जाता है, क्या खाओ पियो, कैसे व्यवहार करो, स्वार्थ की जगह सेवा करने की कोशिश करो, सारी बातें बताई जाती है। पांच नियम जो महाराज जी ने दिए इसी वास्तव के दिए कि सिमरन में हमको सफलता मिल जाए। यदि सिमरन में ही के लिए हमको टाइम ही नहीं मिला तो क्या सफलता मिली आपको? इसीलिए कि सत्साधु का जो वचन उपासे, वाणी के अंदर जो उपासना वर्ड आया है, वचन की उपासना करना, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वचन के अनुसार अपनी बुद्धि को तैयार करना। क्योंकि तो निर्णय बुद्धि करती है, और जैसा निर्णय होता है वैसा ही आपका शरीर जो है संसार में विचरण करता है, वैसा ही आपके अंदर की तैयारी होती है कि इस जन्म लेकर आपने क्या प्राप्त करना है, क्या उन्नति करनी है। क्यों? क्योंकि गुरु का वचन ही, गुरु की वाणी ही, या यूं कहें कि शास्त्रों का वचन ही आपको ये सिखाता है कि यहां तेरी डेथ नहीं है। दुनिया तो कहती है तुम मर जाओगे, कोई सत्पुरुष नहीं कहता कि तुम मर जाओ, वो कहता है कि तुम इस जन्म में वो कमाई करो जो तुमको अगले जन्म में आनंद दे, तुम्हारे जीवन की सफलता दे, तुमने वो कमाई करनी है। तो गुरु ही तेरा नहीं है, गुरु की शरणागति ही नहीं है, उसके प्रति समर्पण ही नहीं है, तो कौन सी कमाई करेगा तू? तो तेरा समर्पण माया के प्रति है, मायाधारियों के प्रति है, चाहे तेरे माता पिता ही क्यों ना हो, माया में यदि रचे पचे हैं तो उसको माया कमाना ही सिखाएंगे, और क्या सिखाएंगे। तो इसीलिए माता पिता गुरु नहीं हो सकते तेरे। जिस गुरु ने उस ईश्वर को प्राप्त किया, जो खुद ब्रह्म रूप है, खुद प्रभु है, वो उस गुरु के प्रति मेरी जब उसकी शरणागति में धारण करता हूं, शरणागति का मतलब यह है कि उसको जीवन का मैं अपना रोल मॉडल बनाता हूं कि मेरा जीवन यदि सफल होगा तो इस मेरा जो गुरु है उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलने से होगा, तब जाके मेरी बुद्धि का ये निश्चय जब बदलता है, तब मैंने जो कुछ भी संसार के प्रोग्राम बना लिए थे उसको कट ऑफ करके, क्योंकि वो तो मेरा जन्म डुबो रहे हैं, सफलता कौन सी मिल रही है? हर दिन, हर माह, हर वर्ष मैं जीवन में विफलता की ओर जा रहा हूं, बुद्धि का ये निर्णय आपका होना चाहिए। यदि गुरु के वचनों का आपने स्वाध्याय किया है या गुरु को समझाया, इसलिए वो आगे कह रहे हैं कि मिथ्या भ्रमन सकल विनाश है, सत साधु का जो वचन उपास है। तो जो गुरु के वचनों की उपासना करता है, अर्थात उनके निर्णय को पूरे दिल से समझने की कोशिश करता है और निर्णय करता है कि मैंने इसके अनुसार ही आगे का जीवन व्यतीत करना है, तो कहते हैं मिथ्या भ्रमन उसकी विनाश हो जाए। मिथ्या भ्रमण क्या है? बुद्धि का गलत निश्चय ही मिथ्या भ्रमण है। बुद्धि का निर्णय जब गलत होता है, संसारिक निर्णय होता है, तो हम संसार की तरफ चल पड़ते हैं, और मैं बुद्धि कहती है तुम भी चल, लेकिन जब गुरु के वचन पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तब हमारा बुद्धि का निर्णय बदलता है। बुद्धि निर्णय करती है तू ईश्वर की तरफ नहीं चला तो पूरी जिंदगी तेरी यह है बर्बाद। ये निर्णय आपका बुद्धि का हो जाता है, इसलिए आप ईश्वर मार्ग पर चलने के प्रति सिंसियर हो जाते हो और संसार के प्रोग्राम को आप कैसा भी नुकसान क्यों ना हो छोटा करते ही करते हो। ये तो समय ही नहीं, जब नहीं है तो सतमार्ग पर चलोगे कैसे? तो समय सको एक दिन में 24 घंटे का मिलता है, तो गुरु जो मेरा है उसने अपने 24 घंटे ईश्वर की तरफ चलने में लगाए और मैं अपने 24 घंटे संसार की तरफ आगे बढ़ने में लगा रहा। तो कब मैं चलूंगा, कब निर्णय मेरा निर्णय बदलेगा, कब मेरे अंदर संस्कार बनेंगे, फिर मैं क्या कमाई लेके संसार से जाऊंगा? तो मैंने संस्कार बनाने हैं, इसके लिए वक्त चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, और वो सारा पुरुषार्थ अंदर का है, बाहर का नहीं है। ईश्वर मार्ग पर चलने का सारा पुरुषार्थ अंदर का है, इसलिए मन को अंदर लाना ही होता है। इसलिए महाजी स्टार्ट ही सादगी से कर रहे हैं कि तू अपना जीवन इतना सिंपल कर ले, तुझे ज्यादा पैसे की जरूरत ही ना रहे, ज्यादा सामान की, ज्यादा वस्तु की जरूरत ही ना रहे। तू सबका मालिक नहीं है, घर वालों का भी मालिक नहीं है, अपना मालिक है। तू अपनी वे ऑफ लाइफ बदल सकता है। कब बदलेगा? जब तू गुरु की शरणागत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में पूर्ण गुरु को धारण करो, क्योंकि पूर्ण गुरु को धारण करने का मतलब हो गया कि आपकी बुद्धि में यह विश्वास रहता है कि गुरु का जो मार्गदर्शन है केवल मेरे कल्याण के लिए और उसका कोई पर्पज नहीं। उसके वचनों को तो गहराई से पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, फिर उसके अनुसार पुरुषार्थ करता है। आगे कहते हैं, अत अंधकार जाए अभिमान, साध की सेव करे कल्याण। यहां भी हम कभी धोखा खा जाते हैं वाणी पढ़कर, कहीं साध की सेव करे कल्याण। जो पूर्ण गुरु है जिसको साधु वाणी कह रही है, उसकी सेवा क्या है? मां जी खुद कहते थे, प्रेमी इनकी तो बस यही सेवा है कि तुम अपना जीवन का कुछ कल्याण करो। ये महाराज जी के वर्ड्स। तो साधु की सेवा क्या है? जो खुद कोई शरीर का भोग नहीं करता, शरीर से जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है, वो आपसे क्या सेवा करवाए? तो साधु की सेवा वास्तव में साधु की शरणागति है। उस गुरु के वचनों पर को मैंने समझना और उस पर फिर अमल करना, यह है साधु की सेवा। तो तभी कह रहे हैं कि अत अंधकार जाए अभिमान, साध की सेव करे कल्याण। तो तेरा उसकी शिक्षा को पढ़ के, उसके प्रोग्राम पर चलकर तेरा कल्याण होता है और तेरे जीवन का जो अंधकार है वो चला जाता है। ईश्वर सर्वभूताना हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है अर्थात जो मैं हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृत देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं तेरे हृदय में ही निवास करता हूं। सारे प्राणियों का ईश्वर उनके हृदय में ही, उनके अंतर्गत ही निवास करता है। वो करता क्या है? भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, मैं जीव हूं, मैं प्राणी हूं, इस शरीर रूपी यंत्र में मैं स्थित हूं, तो ईश्वर भी इसमें स्थित है, खुद कह रहा है, और मैं भी इस देह में स्थित हूं। अब बताइए कर क्या रहा है वो? भ्राम्यन सर्वभूतानि, सारे इन प्राणियों को जो इस देह में स्थित हैं, मानव देह में स्थित हैं, वो मेरे प्रारब्ध के अनुसार संसार में उनको भरमा रहा है, उनको घुमा रहा है। तो इसी को प्रारब्ध कहते हैं, शरीर करके ये प्रारब्ध है। ये कहां जन्मेगा, कहां मरेगा, कब रोगी होगा, सब कुछ इसका प्रीफिक्स्ड है। इतना बड़ा महाभारत कृष्ण कह रहे हैं कि ये फिक्स है, ये सब मरने के लिए ही यहां इकट्ठे हुए हैं, तो इनको मारने वाला कौन होता? वो तो इतने लाखों लोगों के जहां युद्ध होने वाला है, सबका शरीर प्रारब्ध के अधीन है, उनका प्रारब्ध का वक्त आ गया कि ये मरेंगे, तू इनको नहीं मारेगा, इनकी मौत तो पहले ही हो चुकी है। तो अब बताइए, इतने बड़ा युद्ध, इतने लोगों का एक साथ प्रारब्ध इकट्ठा है, तो मैं क्या चीज हूं? तो मेरा प्रारब्ध नहीं है क्या? वो सिद्धांत हमेशा हर मनुष्य पर लागू होता है। तो यदि ईश्वर की बात मैंने पर विश्वास आ गया मुझको, जो इस विज्ञान को सीखे आना ही चाहिए, यदि विज्ञान सीखा है तो फिर आप अपने आप को जीव ही समझोगे, शरीर नहीं समझोगे। और आपको पता होगा इस बात का कि मुझको बंधन किसका है, मन का बंधन है, क्योंकि जो मन में संकल्प उठता है वो मुझको बेचैन करता है, उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए मैं उसको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करता हूं, इंद्रियों का उपयोग करता हूं। तो भ्रम क्यों रहे, क्योंकि बुद्धि का निर्णय आपका गलत है। पहला निर्णय क्या है गलत, कि मैं देह हूं, और दूसरा निर्णय क्या है, मैं मर जाता हूं। ना तू देह है ना तू मरता, सत्य तेरे बारे में ये। तो इतना बड़ा असत्य लेकर मैं जीता हूं और मौत से कितना घबराता रहता हूं, और अपने को मालिक समझता हूं, जो चाहो कर सकता हूं। तो अब बताइए, यदि आपने गीता पढ़ी या समता विलास पढ़ी या ये वाणी पढ़ी, निर्णय तो सब जगह एक ही जैसे, वैदिक काल से ये निर्णय कभी बदलेगी। तो ऐसा अटल ज्ञान, उसको मैं समझने की, जानने की, उस पर विश्वास करने की कोशिश जरूरत ही नहीं समझता। कैसी मेरी बुद्धि, कौन सी अकल लेकर मैं संसार में आया हूं, और कितने क्या विकास मैंने अपना किया कि मेरे बारे में जो सत्य है उसी का विश्वास मेरे अंदर नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं मेरे अंदर, दुनिया संभाले बैठा हुआ। अपने को संभाल नहीं पाया, दुनिया संभाले बैठा हुआ। तो इसलिए कह रही है कि अत अंधकार जाए अभिमान, साध की सेव करे कल्याण। तो इसीलिए साधु जो तूने अपने जीवन में जिसकी शरणागति हुआ, जैसे हम लोग महात्मा भगत राम जी की शरणागति हुए, तो उनका शास्त्र, क्योंकि गुरु से संबंध बन जाता है आपका, वो ईश्वर तो है सब जगह सर्वव्यापक है, तेरे देह में भी, और गुरु कह रहा है मैं भी खुद देह में हूं, तो दो ईश्वर नहीं है देह में, गुरु अलग है और ईश्वर अलग है, वही गुरु बाहर, वही अंतर्यामी ईश्वर बाहर गुरु रूप में, शरीर रूप में प्रकट हुआ मेरे मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि मैं निराकार सत्ता को नहीं पहचान सकता, जो शरीर करके धारण हुआ है, जो प्रकट हुआ है उसको मैं पहचानता हूं, ये मेरा गुरु। लेकिन ज्ञान जो उसके वाणी से आ रहा है वो तो यूनिवर्सल है, सारे जगत के लिए एक जैसा है बिल्कुल। तो मैं जब उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता हूं, तब कहते हैं ये अंधकार मेरा चला जाता है, और ये अभिमान भी चला जाता है कि मैं करता हूं, शरीर जब मैं हूं नहीं, शरीर के बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, जन्म पत्री मैं लेकर पैदा हुआ हूं, तो जन्म पत्री के अनुसार क्या मैं कर्म करता हूं। तो ये शरीर आपका ऑटोमेटिकली प्रभु चलाते हैं तेरे प्रारब्ध के अनुसार। तो चिंता फिक्र मुझे प्रारब्ध की नहीं करनी थी, चिंता फिक्र मुझको अंदर जाने की करनी थी, गुरु प्राण होने की करनी थी, ईश्वर का दर्शन करने की चिंता फिक्र होनी थी। इसीलिए जब मैं अंदर की यात्रा करता हूं, तो कहते हैं कि सत विश्वास जिस गुरुमुख पाया, साध की सीख प्रभु मेल मिलाया। तो वो दिन मेरे जीवन में आ जाता है जिसको वाणी कह रही है कि मेरे अंदर वो सतविश्वास आ जाता है। ये सतविश्वास छोरी वाला सतविश्वास नहीं है, ये अनुभव वाला विश्वास है। जब प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार मैं सिमरन करता हूं और सांसारिक जीवन जीता हूं, तो मेरे अंदर वो लाइव फेथ आ जाता है, जो अनुभवी विश्वास है कि प्रभु मेरे अंदर मौजूद है, मैं उस प्रभु का संग करता हूं। तो अंतिम में क्या होता है, कहते साध की सीख प्रभु मेल मिलाया, अंतर्यामी प्रभु से मेरा उसी प्रकार मेल हो जाता है जिस प्रकार कभी गुरु का अंतर्यामी ईश्वर से मेल हुआ था। तो पूर्ण जीवन की सफलता इसी बात में है कि मैं पूर्ण गुरु पर विश्वास करूं, उसकी शरणागत हूं। शरणागत का मतलब जैसे वो वे ऑफ लाइफ बता रहा है उसके अनुसार मैं अपने जीवन का प्रोग्राम बनाऊं। ये प्रोग्राम मेरा दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन मेरा बर्बाद होगा, उनका बर्बाद नहीं होगा। इसलिए मैंने हिम्मत करनी है और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अपना प्रोग्राम बनाना है और मानव जीवन को सफल करना है। ओम सत्यम सत्यम।